ये आकाशवाणी है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम आर्थिक सुधारों का अटल स्वप्न। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी राजकुमार शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी।
हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए,
टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। अटल जी का जब भी जिक्र होता है हमारे सामने एक ऐसी छवि उभरती है जो कवि हृदय तो है ही, विकास पुरुष भी है। अटल जी ने कैसे भारत की कल्पना की जो न सिर्फ आत्मनिर्भर और सशक्त हो बल्कि विकास की ओर तेजी से अग्रसर भी हो। वाजपेयी जी ने इसका भी ध्यान रखा कि विकास की दौड़ में शामिल भारत मानवीय मूल्यों के साथ भी खड़ा हो, तकनीक से लबरेज हो और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक भी। कह सकते हैं कि वाजपेयी जी ने समावेशी विकास का सपना देखा था, उसी सपने को जमीनी हकीकत बनाते हुए उन्होंने देश को ऐसी दिशा दी जिस पर आगे बढ़ते हुए आज भारत न सिर्फ विश्व गुरु बनने की राह पर है बल्कि उसकी प्रतिभाओं का दुनिया लोहा मान रही है। देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अटल जी विकास को लेकर क्या सोचते थे, भारत के विकास को लेकर उनका क्या सपना था, इन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी। शर्मा जी का विशेष परिचय ये है कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी रहे। राजकुमार जी आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले जब वाजपेयी जी का जिक्र आता है आप उनके ओएसडी रहे, उनके कार्यालय में काम किया, वैसे आपका उनका निजी परिचय भी था, निजी रिश्ता भी था, आखिरी दौर तक रहा
जी।
जब विकास के संदर्भ में बात होती है तो आप उन्हें किस तरह से याद करते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो अटल जी की स्मृति को नमन करता हूं मैं। उनका जो एक बहुआयामी व्यक्तित्व रहा है, जैसे आपने कहा, एक लोकप्रिय राजनेता, एक संवेदनशील इंसान, एक उत्कृष्ट वक्ता, एक कवि, एक पत्रकार, एक विजनरी और एक कुशल प्रशासक, इन सब बहुआयामी व्यक्तित्व में सारा होते हुए उनका जो ये आर्थिक मोर्चे को सफलतापूर्वक चलाने का जो उनका पक्ष है वो थोड़ा सा दब सा गया है, क्योंकि लोग उनको एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में, विजनरी के रूप में सब मानते हैं, लेकिन जो उनको आर्थिक मोर्चे पर जो सफलता मिली उनकी सरकार को वो थोड़ा दबसी का ही माना जाता है। किसी संस्था, व्यक्ति या सरकारों की सफलता असफलता की कसौटी उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद तय की जाती है। अगर इस कसौटी पर आप देखें, जब 2004 में वाजपेयी जी की सरकार चली गई तो उस समय जो GDP थी वो 8% से ऊपर थी, जो मुद्रास्फीति की दर थी वो 4% से नीचे थी और विदेशी मुद्रा का भंडार लबालब भरा था। तो ये तीन ऐसे मानक हैं जिनके आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी सरकार की आर्थिक मोर्चे की सफलताओं को आप आंक सकते हैं। इस रूप में मैं कह सकता हूं कि अटल जी इन सब चीजों के साथ साथ एक कुशल आर्थिक प्रशासक भी सिद्ध हुए हैं।
आजकल चर्चा चलती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, ऐसा विकास जिसमें समाज के हर वर्ग का, हर समुदाय का एक साथ विकास हो। वाजपेयी जी ने एक नारा भी दिया था, स्कूल चलें। वाजपेयी जी की कौन कौन सी योजनाएं आपको याद आती हैं जिन्होंने भारत को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई?
देखिए, वाजपेयी जी के ऐसे तो बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने सबसे पहले एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए जो कदम उठाए वो आज भी चल रहे हैं और आज भी लोग उनको याद करते हैं। दूसरा, उन्होंने एक आर्थिक उदारीकरण की और जो प्रक्रिया थी उसको और तेजी से आगे बढ़ाया, जिसके कारण आज देश को उसके आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने हमारी जो सार्वजनिक उपक्रम इकाइयां हैं जो घाटे में चल रही थी, सरकार पे बोझा बन गई थी, उनको भी प्राइवेटाइजेशन करना और उसमें प्रॉफिट निकालना, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और उसमें ये चीजें आगे बढ़ी। मैं उसका कारण एक मानता हूं कि जब 1991 में देश में जो आर्थिक उदारीकरण आया, वो उदारीकरण कांग्रेस की सरकार को मजबूरी में लेना पड़ा, कोई वो कंपल्शन था, कमिटमेंट नहीं था या कन्विक्शन नहीं था। पर अटल जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कन्विक्शन के साथ आर्थिक उदारीकरण को आगे बढ़ाया, इसलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ठीक करना, इसलिए आपको याद होगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसके अंदर 5,864 किलोमीटर से अधिक देश के भागों को जोड़ना, विशेष रूप से दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई, इनको जोड़ना,
देश के
चारों महानगरों को जोड़ना, अपने आप में बड़ा ऐसा काम था उसमें कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन वो शुरुआत वहां से हुई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हर गांव को कस्बे से जोड़ना, जिससे कि किसान की आवाजाही और उनके उत्पाद जो है सही समय पहुंच सके। और ये बारामासी जिसे कहते हैं
हर मौसम में
सड़कें चलने के लिए, मुझे याद है उनके साथ झारखंड में एक बार हम लोग गए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, तो उस समय उनको बड़ा जैसे आत्मसंतोष मिलता, ऐसा उनको संतोष मिला कि उनको लगता था कुछ हम लोग कर पा रहे हैं ग्रामीण अंचलों तक, तो उसको जो उन्होंने बढ़ाया वो अपने आप में एक बड़ी चीज थी। मुझे लगता है दूसरा जैसे उन्होंने निजीकरण का जो किया वो भी अपने आप में उस समय देश की आवश्यकता थी, अदरवाइज क्या होता हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट धीरे धीरे कुशल प्रबंधन न होने के कारण से या कुछ और कारणों से वो घाटे वाली व्यवस्था उसमें बदल गई थी। तो उसमें निजीकरण को करके उन्होंने उन कंपनियों को न केवल जीवित किया बल्कि उनको प्रॉफिट मेकिंग वाली कंपनी में हुआ। आप देख सकते हैं बाल्को का उदाहरण है, नेल्को का है, बीएसएनएल है, इंडियन पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल्स है,
बीमा उद्योग भी उसी समय
शुरुआत हो गई थी। उससे बड़ा एक टेलीकॉम टेक्निक में जो उन्होंने किया वो अपने आप में आज देखेंगे टेलीकॉम की जो स्थिति है, मुझे याद है नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1999 में आई थी, उसके बाद जो देश में जो कायाकल्प हुआ है मोबाइल फोन का, पहले मोबाइल फोन इन अमीरों तक हुआ करता था, उसका एक मिनट का चार्जेस भी
मोबाइल फोन ही नहीं बेसिक फोन के लिए भी लाइन लगाना पड़ता था दो दो साल तक,
वो ऐसा लगता था जिनके हाथ में वो बड़ा इलीट क्लास वाले हैं, कि आज सबके हाथ में मोबाइल है चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, और उसकी जो दर हो गई है बल्कि कॉल फ्री हो गई है। तो ये उस समय की जो पॉलिसी थी उन्होंने जो अपनाई उसके कारण से आज ये रास्ता प्रशस्त हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं कि जो उस समय फाउंडेशन रखा गया उसको बढ़ाने में हमारे जो आज के प्रधानमंत्री मोदी जी उसको और गति से और अच्छे ढंग से उसको वो बहुत आगे बढ़ाने में लगे हो।
आपने ये जिक्र किया बारहमासी सड़कों का या डिसइन्वेस्टमेंट का मंत्रालय अलग से बनाया गया, तो मुझे याद है कि एक बार उन्होंने संसद में कहा था कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है, उद्योग की सुविधाएं देना है, तो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री मतलब विनिवेश मंत्रालय का अलग से बनाया, तो उस समय आप प्रधानमंत्री कार्यालय में काम भी करते थे, उनके ओएसडी थे, क्या उस समय माहौल रहा था, किस तरह से यह निर्णय लिया गया था?
निजीकरण की जब भी बात आई है तो हमेशा उसके बारे में रिजर्वेशंस रहे हैं सरकार में भी और बाहर समाज में भी, क्योंकि जब तक जो लीक चली आई है उसको लीक को आप जब भी चेंज करेंगे तो नेचुरल उसके बारे में विरोध होगा, उसमें रिजर्वेशंस आएंगे। लेकिन वाजपेयी जी का जो एक फर्म एक जो है दृढ़ जो एक की लीडरशिप थी, तो उन्होंने जब तय किया कि इसका यही एक रास्ता है आगे बढ़ने के लिए संस्थाओं को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट थी मिलीजुली सरकार थी सिर्फ बीजेपी की नहीं थी, तो उन्होंने अपने अलायंस को कन्विंस किया और उसको आगे बढ़ाया। इसका मैं मानता हूं कि वाजपेयी जी ने जो किया बड़ा फर्म कन्विक्शन के साथ किया। मैंने कहा ना कि कांग्रेस ने जो पॉलिसी अपनाई वो कंपल्शन में थी, वाजपेयी जी ने कन्विक्शन के साथ किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जो पहले जनसंघ थी वो सब लोग लाइसेंस कोटा परमिट राज के विरोध करते रहे कि इससे भ्रष्टाचार होता है इनफिशियंसी आती है, तो जब मौका मिला अटल जी को तो उन्होंने कुशल प्रशासक होने का परिचय भी।
वाजपेयी जी के साथ एक बड़ी चुनौती थी कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 182 सीटें, चाहे 1998 का चुनाव रहा हो चाहे 1999 का चुनाव रहा हो, 182 सीटें मिली थी और बाकी 27 से लेकर के 28 पार्टियों का एक कोलिशन था, एक गठबंधन था। ऐसे में चूंकि आप उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किए हैं और उसमें कुछ डिफरेंट विचारधारा वाली भी पार्टियां थीं, जैसे जनता दल ने एक जमाने में कुछ सवाल उठाए थे, फिर भी उन्होंने पूरी सफलता के साथ ये जो उदारवादी नीतियां थीं, नए भारत को रचने का जो सपना था, उन नीतियों को उन सपनों को जमीनी हकीकत बनाने की कोशिश की, तो कैसे संतुलन साधते थे?
उस संतुलन साधने का सबसे बड़ा कारण ये था अटल बिहारी वाजपेयी जी की विश्वसनीयता। जो अलाइज थे उनको मालूम था कि वाजपेयी जी कुछ भी हो लेकिन उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी है उनपे उनको भरोसा था, उनको लगता था कि वो जो भी काम करेंगे वो सब निजी हितों से ऊपर उठकर देश के जो हित में है वो करेंगे। अलाइज का थोड़ा विरोध होता था लेकिन अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो उनको जब समझाते थे तो जितने भी लोग जो विरोध भी करते थे वो समझ कर जाते थे और उसका स्वागत करते थे। तो मुझे लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट की जब भी बात होती तो हमेशा लगता था कि भाई इसमें गड़बड़ होगी ये होगा, लेकिन चूंकि वाजपेयी जी की ईमानदारी विश्वसनीयता ये जो कारण था उसके कारण से मुझे लगता है ये प्रोसेस इतना सफल हुआ और सक्सेस हुआ आगे बढ़ा।
इस पर चर्चा से ही मुझे याद आता है पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी का एक इंटरव्यू, जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में कांग्रेस की सीटें ज्यादा थीं, लेकिन उन्होंने बताया था कि मेरे को चुनौतियां ज्यादा थी बनिस्बत वाजपेयी जी की, तो उनसे पूछा गया था नरसिंह राव जी से कि ऐसा क्यों, तो बोले कि वाजपेयी जी भले सीटें कम जीते थे लेकिन पूरे देश के नेता थे, पूरा देश उनको नेता मानता था, जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। इसी बात पर एक चर्चा आती है कि खासतौर पर जो उन्होंने अभी आपने ग्राम सड़क योजना का जिक्र किया और सड़कों के बारे में कहा जाता है कि सड़कें सिर्फ आवागमन का साधन ही नहीं होती हैं, वो विकास का एक बड़ा जरिया होती हैं। तो उस जरिया को उन्होंने सफल बनाने की कोशिश जो की उसके पीछे क्या वजह रही, क्या सपना रहा? हालांकि उन्होंने अपना जो पहला चुनाव का जिक्र किया जिसमें वो बलरामपुर से जीते थे, तो जिस तरह से पहुंचे थे रेलगाड़ी से और उसका जो जिक्र करते थे, क्या ऐसा लगता है कि उनके जो संघर्ष था उन संघर्षों के चलते एक दृष्टि विकसित हुई थी?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाजपेयी जी जो बने थे प्रधानमंत्री बने, लेकिन वहां तक आने का जो सफर है वो बिल्कुल जैसे एक साधारण परिवेश से आना और एक आम आदमी की जो दिक्कतें होती हैं, उस समय के जो जीवन स्तर था, जिस ढंग से अभाव थे, उनमें से निकलकर ही वो आगे बढ़े थे। तो उनको वो सब चीजें मालूम थी कि आम आदमी को क्या चाहिए या किस चीज की कमी है। वैसे एक बात और कहूं, प्रधानमंत्री वो 96 में पहली बार बने, पर देश उनको पहले प्रधानमंत्री के रूप में मान चुका था। तो नरसिम्हा राव जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, नरसिम्हा राव तो मजबूरी में कांग्रेस मिल रहा है। अटल जी क्या थे, भले ही विपक्ष में थे लेकिन लोग उनको प्रधानमंत्री के रूप में पहले से ही मानते थे। ये बात अलग है कि वो 98 में विधिवत प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ एक ये था। लेकिन जो उनका अपने अनुभव थे, तो हमेशा कहते थे, हम लोग जब भी बात करते थे कहते हैं नहीं नहीं, इसमें आम आदमी देखो जो गांव का आदमी है, खासकर गांव का परिवेश उनका जो रहा, तो वो आखिर तक उनके साथ रहा। वो हमेशा बात करते थे, अरे उस गांव में मैं गए थे, वहां ऐसा हुआ था, वहां ऐसा हुआ था। मुझे लगता है कि जो उनके अपने खुद के अनुभव थे वो उनको इस पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में बहुत काम आए। और हमेशा वो कहते थे कि आर्थिक सुधारों का मानवीय चेहरा होना चाहिए। आर्थिक सुधार हार्ड है, करने पड़ेंगे, कई बार डॉक्टर की दवाई कड़वी है, लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें भी मानवीय उसका एक रूप रहना चाहिए।
एक जो बहुत ही साहसिक फैसला था, महाशक्तियों के गुस्से को, नाराजगी को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा साहसिक फैसला था, मई 1998 में जो परमाणु परीक्षण था। और परमाणु परीक्षण को उस समय दुनिया ने ऐसे लिया कि भारत हथियार बनाने जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है या बल्कि देश भी मानता है और आज की दुनिया भी मानती है कि जो आज ऊर्जा की जरूरतें हैं या विकास के कामों में जिस तरह से परमाणु तकनीक की जरूरत है, उसकी जरूरत को देखते हुए भी पोखरण परीक्षण जरूरी था। तो वो एकदम से देश को चौंकाया था वाजपेयी जी ने ऐसा करके, उसको आप कैसे देखते हैं, उसको किस तरह से किया गया था?
देखिए, वो अपने आप में ऐसा साहसिक एक फैसला था और साहसिक कदम था, उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसा साहसिक था वो शायद इतिहास में देखने को कम मिलता है। वाजपेयी जी जिस पार्टी से संबंधित रहे, जनसंघ से या बीजेपी से, उनकी डिमांड हमेशा रही कि भारत को अपनी सुरक्षाओं को देखते हुए परमाणु परीक्षण करना चाहिए। इसे जब मिसेस गांधी ने जब 74 में किया था तब भी जनसंघ ने उसका समर्थन किया था। इसलिए जब उनको पहला मौका मिला, पहली सरकार में ही सबसे पहला उनका निर्णय अगर कहा जाए तो यही था। अमेरिका के विरोध के बावजूद, इन सबके विरोध के बावजूद उन्होंने ये किया। उसके दो कारण थे, एक तो उनको लगता था कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसके हिसाब से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और उनको लगता था कि परमाणु आने वाले दिनों में ऊर्जा का भी एक बड़ा सोर्स बनने वाला है और उसमें जिस तरह के जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे वो उनके ध्यान में थे। इसलिए मैं उनको कहता हूँ एक विजनरी भी थे वो। तो उन्होंने इसको किया। आज देखिए उसका परिणाम ये हुआ कि हम सुरक्षा के रूप में आज एक परमाणु शक्ति है, दुनिया मानती है। दूसरा, आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि अभी संसद में पास और प्राइवेट प्रेयर्स को उसमें हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस का और एक हमारे विकास का एक रास्ता है। बल्कि कांग्रेस को भी मनमोहन सिंह की सरकार में भी उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया, तो उनको कंपटीशन में बढ़ा, लेकिन हमारा कमिटमेंट के साथ जो बढ़े, तो वो एक अपना बहुत साहसिक निर्णय था अटल जी का।
अटल जी ने शिक्षा पर भी बहुत ध्यान दिया, वैसे तो कवि थे ही और अपने इंटरव्यू में कई बार वो जिक्र कर चुके थे कि एक घटना नहीं घटी होती तो शायद संपादक होते, कवि होते, और संपादन भी किया था उन्होंने,
पांचजन्य में किया,
पांचजन्य का किया, स्वदेश का किया, राष्ट्रधर्म का किया, तो संपादक रहे। शिक्षा को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, सर्व शिक्षा अभियान, जिसका नारा अभी भी याद आता है, चलो स्कूल चले, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं, उसको कैसे याद करते हैं?
मैंने कहा ना कि उनके जो एक्सपीरियंसेस है, जो लाइफ में जिस से वो देखते हुए स्ट्रगल करते हुए उस व्यवस्था में से वो निकल कर आए थे, तो उनको लगता था कि उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। वो कारण था कि उनको लगता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में या बच्चों में एजुकेशन की कमी है और उसको सुलभ बनाने के लिए उन्होंने इस ढंग से उसको किया। और उसमें बड़ा हिस्टोरिकल एक तरफ में अपने निर्णय था, चलो स्कूल चले, उसका बहुत अच्छा अप्रिशिएशन और समाज ने भी उसका अच्छा प्रतिसाद किया। और मैंने कहा ना, इन सारी नीतियों के करते समय जो व्यक्ति है, जो लीडर है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत काउंट करती है, जनता को भरोसा था।
इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन,
जी,
मुफ्त स्कूली शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, तो ये एक बड़ा कदम था। जब ये सब योजनाएं बनती थी या इम्प्लीमेंट होती थी तो उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में या घर में क्या माहौल होता था और किस तरह से आप लोगों से चर्चाएं होती थी?
देखिए, जैसा कि सिस्टम में होता है, प्रधानमंत्री जी अपना विजन जो कंसर्न लोग थे उनको दिया करते थे कि भाई इसमें ये होना चाहिए और ये जब आप पॉलिसी बनाए तो उसमें ये चीज फोकस होनी चाहिए, तो बाकी जो लोग थे वो बना के लाते थे। लेकिन उनका ये था कि वो आने के बाद हर चीज को पढ़ते थे, एक एक चीज को तोलते थे, एक एक शब्द को तोलते थे, इसका क्या मीनिंग निकलेगा। और आप देखेंगे कि मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में उनकी सरकार आने के बाद से ही एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होनी चाहिए वो उस समय शुरू हुई। उस समय योजना आयोग में एक सेल बना जिसमें उन्होंने इंडिया 2020 पहली बार ऐसे एक डॉक्यूमेंट सामने आया। उससे पहले क्या 5 साल की योजना बनती थी या इलेक्शन टू इलेक्शन होता था? तो एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी के मामले में, आर्थिक उसके मामले में, हर मामले में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की शुरुआत उन्होंने की। तो वो हर चीज को पढ़ते थे और मैंने कहा वो अपना विजन जो उनका था वो दिया करते थे, उसके बाद फिर वो उसको डिस्कस करते थे अपने कुछ लोगों से कि इसका ये मीनिंग होगा, तो उसके बाद ही उसको आगे गो अहेड करते थे।
वो भाषण देने के तो उस्ताद थे, लेकिन जब देखा गया कि प्रधानमंत्री पद की औपचारिकता के चलते कई बार लिखित भाषण पढ़ना होता था तो उनकी जो एक स्वाभाविक लय थी कई बार गड़बड़ होती थी। और कुछ चीजें मुझे भी याद हैं, खासतौर पर मैं भी उन दिनों रिपोर्टर की तरह देखता था। तो क्या बाद के दिनों में उन्होंने अपने भाषणों में कुछ अलग से काम करना शुरू किया, क्योंकि बाद के दिनों में फिर उनके भाषण की वही लय आ गई थी?
मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला कि उनके जो भाषण तैयार होते थे उसमें मैं भी और भी लोग करते थे, मैं भी उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता था। तो मैं हमेशा उनको कहता था, मैंने कहा जी आप रीडर नहीं लीडर हैं, और सबसे बड़ा जो आपका यूएसपी है वो भाषण देना है, लोग आपको सुनने आते हैं। सुनते थे, पर वो उनका क्या था, जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो वो जरा ओवर कॉशियस हो गए थे। उनको लगता था कि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, कोई शब्द ऐसा ना चला जाए कि जिसके कारण से कोई गलतफहमी हो, तो इसके लिए वो कई बार पढ़कर बोला करते थे। लेकिन जब वो पढ़ के नहीं बोला करते थे, वो मैं मानता हूं कि ओरिजिनल वाजपेयी जी वो हुआ करते थे। तो एक पुस्तक है, आपने अगर देखी हो, राजनीति के उस पार, उसमें अटल जी के 20 भाषणों का संग्रह है, ओरिजिनल अटल जी वो है। तो ओवर कॉशियस होने के कारण से वो थोड़ा ये हो जाते थे।
वाजपेयी जी की एक और बड़ी इनिशिएटिव उनका जो था, लाहौर बस यात्रा, जो उन्होंने फरवरी 1999 में की थी, और उसी के बाद कारगिल भी हुआ था, तो उसको लेकर के वाजपेयी जी क्या सोचते थे और किस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने और राम मनोहर लोहिया जी ने भारत पाक महासंघ की कल्पना की थी। मतलब उन लोगों का भी मानना था कि भारत और पाकिस्तान तो एक नहीं हो सकते लेकिन एक महासंघ बन सकते हैं, और शायद वही सपना था कि वाजपेयी जी ने खुद कदम बढ़ाया था और खुद बस से वो लाहौर पहुंचे थे। तो उस वाकये को लेकर के आपकी क्या स्मृतियां हैं और किस तरह से वाजपेयी जी उन दिनों सोच रहे थे?
देखिए वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिससे वो बिलोंग करते थे, उनका हमेशा से ये मत रहा कि भाई भारत पाक संबंध नॉर्मल हो। जब वो विदेश मंत्री भी थे मोरारजी सरकार में 77 में, तब भी उन्होंने जो वीजा के मामले में सब मामले में उन्होंने काफी पहल की जो लोग आज भी याद रखते हैं। तो उनका ये मानना था कि इस उपमहाद्वीप में अगर शांति होनी है तो भारत पाकिस्तान के संबंध ठीक रहने चाहिए। इसको लेकर वो हमेशा प्रयासरत रहते थे। उनकी कविता भी है, आओ जंग ना होने देंगे करके, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में। तो ये लाहौर वाला उनके मन में आया कि एक इनिशिएटिव लिया, ऐसा इनिशिएटिव था कि दुनिया आज भी याद रखती है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो उसमें किया उसके कारण से वो विफल हो गया। और देखिए उसमें क्या होता है, हर अच्छे कार्य का परिणति क्या होती है, चाहे आपका दुश्मन या आपका जो विरोधी है उसको माने ना माने, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। जब मुशर्रफ उस समय जब यह लाहौर बस यात्रा लेकर गए, नवाज शरीफ तो प्रधानमंत्री थे, मुशर्रफ उनके सेनाध्यक्ष थे, तो उन्होंने उस समय कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। लेकिन वही मुशर्रफ जब बाद में आगरा में आए और उसके बाद इस्लामाबाद में 2004 फरवरी में जो सार्क बैठक हुई थी उसमें अटल जी के साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ, उसमें उन्होंने माना कि हम अपनी भूमि से किसी आतंकवादी को ऑपरेट नहीं करने देंगे। 2004 में जब अटल जी की सरकार चली गई, मुझे याद अप्रैल 2005 में या 6 में मुशर्रफ भारत आए थे यात्रा पर, तो उस समय उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय को कहा, क्योंकि व्यक्तिगत उसका मैं प्रत्यक्ष दर्शी में मुझे पता है, तो उन्होंने कहा वो वाजपेयी से मिलना चाहते हैं। अब जैसा होता है दूसरी सरकार थी, उन्होंने बताया होगा जो भी प्रोटोकॉल में रहा होगा, तो किसी तरह से कार्यक्रम नहीं बन रहा था। लेकिन मुशर्रफ जिद पे थे कि मुझे मिलकर जाना है। वाजपेयी जी भी अस्वस्थ चल रहे थे उस समय, तो उसमें तय यह हुआ कि वो जब एयरपोर्ट जाएंगे तो वाजपेयी जी के निवास से होते हुए जाएंगे। उसे प्रोटोकॉल भी अड़े नहीं आता था, तो वो आए और मैं उस समय चूंकि वहां स्वयं था उस समय, तो मैंने देखा मुशर्रफ ने सैल्यूट किया और कहा वाजपेयी जी अगर आज आप होते तो बात कुछ और होती। तो ये था उनका एक इम्पैक्ट उनके व्यक्तित्व का, कि जो उनके विरोधी भी थे जिन्होंने विरोध किया, आपने उनको सैल्यूट करके गए और उनके कहकर गए।
मुझे इसी पर एक और चीज याद आती है कि लाहौर बस यात्रा में जब वहां गए और पाकिस्तान की जनता जब उनको उमड़ पड़ी देखने के लिए, तो नवाज शरीफ जो उन दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी अब आप यहां से भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं।
बिल्कुल,
वाजपेयी जी ने जैसे बीमा क्षेत्र को खोला था जिस तरह से, तो उसको लेकर के उन दिनों खासतौर पर एक विपक्षी दलों की ओर से बड़ी विरोध हुआ था, एक ट्रक विरोध में हस्ताक्षर भी दिए गए थे। इसके बावजूद वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में ऐसा क्या था कि वो फर्म रहे और उन्होंने खोला? ठीक है, कुछ समय 26% का ही विदेशी हिस्सेदारी को अनुमति मिली, आजकल तो और ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या उनके व्यक्तित्व में था कि ऐसे फैसले इतने विरोध के बाद भी ले सकते थे और उन्होंने लिए?
मैंने कहा एक तो सबसे बड़ा था उनकी विश्वसनीयता, उनकी ईमानदारी। लोगों को भरोसा था कि ये आदमी बेईमान तो नहीं हो सकता, जो करेगा ईमानदारी से करेगा। निर्णय लेने से पहले लोगों से सलाह किया करते थे, अपने आप ले लिया ऐसा नहीं था, सलाह लिया करते थे उसके प्रो एंड कॉन्स क्या है ये सोचते थे, फिर उसके बाद एक बार अगर निर्णय कर लिया फिर वो फॉर्मली उसको आगे तक ले जाते थे। और उनकी कन्विंसिंग पावर इतनी थी कि जो हमारे विरोधी भी थे सरकार में भी और बाहर भी, वो एक बार मिलते थे, जब मिलके आते थे बाहर, जाते समय तो बड़े गुस्से में और इसमें जाते थे, जब आते थे ना बड़े सेटिस्फेक्शन में और बड़े मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया। तो मुझे वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का और उनके एक विजन का, जो एक कन्विंस करने की उनकी जो कला थी या उनकी विशेषता थी, उसने इन सब चीजों को पॉसिबल किया।
विनिवेश जब हो रहा था, भले उन्होंने अलग मंत्रालय बनाया था, अरुण शौरी जी को उसकी जिम्मेदारी दी थी, तो कुछ विनिवेश के फैसलों को लेकर के उन दिनों की स्वाभाविक सहयोगी पार्टी जो शिवसेना थी उसने विरोध किया था, इसके बावजूद अपना जो फैसला था वाजपेयी जी ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया और डिस इन्वेस्टमेंट में, विनिवेश में अरुण शौरी जी को खुला हाथ दिया था। तो ये कैसे होता था, इसको कैसे याद करते हैं आप, इसको कैसे देखते हैं?
मैंने जैसे कहा ना, सबसे बड़ी उनके बारे में जो एक विश्वसनीयता और ईमानदारी, ये दो चीजें ऐसी थी कि लोगों को भरोसा था कि जो करेंगे गड़बड़ तो कम से कम नहीं होगा। इसलिए अरुण शौरी को जब दिया, और देखिए जब भी कोई आप सरकारी चीज को प्राइवेट हाथ में देंगे तो ये आशंकाएं उठना स्वाभाविक है, लेकिन उसको उसी ढंग से कन्विंस करना, उस ढंग से उनको बताना और उनको कन्विंस करके अपने साथ लेना, ये कला वाजपेयी जी की थी और लोगों में कम है।
कई बार संसद में भी, एक बार संसद में किसी मामले पर चर्चा हो रही थी तो विपक्षी बेंच, जो उन दिनों कांग्रेस विपक्ष में थी आज ही की तरह, तो बड़ी टोकाटाकी हुई, तो उसमें वाजपेयी जी बोलने के लिए खड़े हुए और जब टोकाटाकी हुई तो बैठ गए, बोले कि अब आप ही लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। तो उसके बाद मुझे याद आता है कि पूरा विपक्ष, जितने विपक्ष के बड़े नेता थे, ये लोकसभा की घटना है, सब खड़े होकर के बार बार बताने, याद दिलाने लगे कि हम फला जगह आपका भाषण सुनने आए थे, आप ऐसे कैसे चुप रह लेंगे, फिर आप कैसे कह देंगे कि नहीं बोल सकते हैं। हर नेता, प्रेरंजन दास मुंशी, रामविलास पासवान, मतलब जो उन दिनों विपक्ष में जा चुके थे, शायद ये 2001 या 2 की घटना है। तो वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का ये जो चुंबकीय पक्ष है, क्या आप लोगों को अपने उन दिनों कार्यालय में या ऑफिस में भी देखने को मिलता था, किसी बात पर आप लोग भी असहमत होते थे, और किस तरह से अगर होते थे तो सहमत करते थे?
देखिए, ये उनकी महानता थी, मुझे तो मेरे का सौभाग्य मेरा ये रहा कि हम जब स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे उनके भाषण सुनने के लिए हम जाया करते थे, उसके बाद जब मैं 5-6 जने स्वदेश में रहा तो उनके इंटरव्यूज करने का मौका मिला, उसके बाद उनके साथ ओएसजी के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला, तो तीनों पक्ष मेरे को देखने को मिले। पर इतना होने के बाद भी उनकी एक महानता थी, जैसे कि मान लीजिए कभी कोई उनके भाषण में कुछ चीजें तैयार हुई हैं, वो कई बार पूछा करते थे ये ऐसे क्यों है, तो उनको हम बताते कि सर आपने इस समय ये कहा था, ये इसके कारण से ये किया है, उस पर वो कई बार बहस करते थे, और बहस इस ढंग से करते थे हम समझने के हिसाब से, कभी उन्होंने एहसास होने नहीं दिया कि वो इतने महान नेता है, इतना महान व्यक्तित्व है, उनके सामने हम भाषण क्या कहीं खड़े भी नहीं होते थे। कई बार तो एक दो संस्मरण ऐसे भी हैं कि कुछ उनको लगा कि ये चीज ठीक नहीं जा रही, तो मैंने उनको एक पेन निकाल के कहा, मैंने कहा आप संपादक रहे हैं तो आपकी लेखनी चलेगी तो उसका एक अलग ये होगा। तो मैंने देखा 13 लाइनों का एक पैराग्राफ था, उसको उन्होंने काटा, वो आदमी मेरे पास सुरक्षित है, काटा और एक लाइन में उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो ऐसा उनका एक व्यक्तित्व था, हर चीज को समझना, कोई जल्दबाजी में काम नहीं करते थे, सबसे सलाह करके काम करते थे, और एक बार फैसला कर लिया तो उसको पूरा इम्प्लीमेंट करते थे, ये उनकी खासियत थी।
अच्छा, जब निजीकरण की शुरुआत कर रहे थे, खासतौर पर 1999 में BSNL का और MTNL का एक अधिकार होता था, तो उस समय विवाद हुए थे, बड़े विरोध हुए थे, तो उस समय किस तरह से चीजों को हैंडल किया था उन्होंने?
विवाद होना स्वाभाविक था, क्योंकि जो चीज अगर सरकार के उसमें रही हो, आप उसको किसी प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हो या उसमें कुछ नई चीज करने जा रहे हो, तो उसमें तरह तरह के जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट का विरोध होगा, कई लोगों को जेन्युइन होगा, कई और लोगों का अपने पूर्वाग्रहों के कारण से होता है। लेकिन वाजपेयी जी के मैंने समझाने की जो कला थी, और वो एक बार जो कन्विंस हो गए, जिसमें कन्विंस नहीं होते थे उसको वो छोड़ भी दिया करते थे कि भाई इसमें नहीं हो रहा, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ती थी, लेकिन जिसमें कन्विंस हो गए तो उसको वो पूरा विरोधियों को, अपने मित्रों को, सबको समझाने में सक्षम थे, इसके कारण से वो जब ये जो कह रहे हैं जिस समय आया इसमें BSNL, इसका भी तो उस समय लोगों ने कहा, लेकिन देखो उनका विजन था कि आज आप देखें जो हमारी टेलीकॉम सर्विसेज हैं कितनी एडवांस हो गई हैं, उसमें सरकारी एजेंसीज थी, वो काम करती थी अपने ढंग से, जितना उनका सामर्थ्य था किया, लेकिन उसमें प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं लैग कर रहा था। आप से देखें उसमें जो प्राइवेट प्लेयर्स आए आज, कितनी उसके कारण से एक बिल्कुल संचार क्रांति हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये उनका एक विजन, उनका एक व्यक्तित्व और उनका एक काम करने का स्टाइल, इस सब ने उनको संभव किया।
क्या आप मानते हैं कि आज जो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और माना जा रहा है कि 2027 के बाद वो तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है, इसमें वाजपेयी जी के विजन का, उनके नजरिए का, उनके दृष्टिकोण का बहुत बड़ा योगदान है?
निसंदेह, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये देखिए, बड़ा संयोग है, भगवान की ये कृपा है कि जो फाउंडेशन वाजपेयी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी से आते थे रखा, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी उसी पार्टी से आते हैं और उसको वो आगे बढ़ाकर और उसमें और नई नई चीजें ऐड करके वो उसको जिस तरह एस्टेब्लिश कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, उस पर कोई शक ही नहीं कि 2047 तक भारत स्वर्णिम भारत होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया, तो उसमें भी क्या वाजपेयी जी की निष्ठाएं, वाजपेयी जी का जो नजरिया, जो दृष्टिकोण रहा है, उसका भी बड़ा योगदान रहेगा?
बिल्कुल, हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं वो भी वाजपेयी जी से सलाह लेते, उनका आशीर्वाद लेते रहे हैं, उनके आदर्शों को लेकर ही वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके अपने भी जैसे होता है परिवार में, एक नई पीढ़ी में जो लोग होते हैं वो अपना सामर्थ्य भी दिखाते हैं, लेकिन जो पुरानी विरासत है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये सब मिलकर ही जो है चीजें भारत को एक स्वर्णिम भारत के रूप में 2047 में देश को बना पाएंगे, ऐसा लगता है।
वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व रहा है, जिस तरह से उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, राजनीतिक कार्यकाल रहा है, उस पर तो हम लोग घंटों चर्चा कर सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातों की जानकारी दी, खासतौर पर अंदर खाने में जिस तरह से आपने उनसे बात की, या भाषण लिखा, या भाषण में जिस तरह से डिस्कस हुआ, जिस तरह से चर्चाएं हुई, उसकी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये आखिर में कह सकते हैं कि वाजपेयी जी सही मायने में विपरीत परिस्थितियों में संतुलन के नायक थे, और संतुलन के साथ उन्होंने देश को, देश के विकास को, देश की संस्कृति को एक नया नजरिया दिया। राजकुमार जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एक ही वाक्य कहूंगा, अटल जी का जो व्यक्तित्व था, मुझे लगता है वो एक इंद्रधनुषी व्यक्तित्व था, उसमें सब तरह के रंग समाहित थे। वो आज भी देश को और हमारी राजनीति को आलोकित कर रहे हैं। आपने ये बुलाया, धन्यवाद।
नमस्कार।
नमस्कार।
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे, यदि ज्वालाए निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है, आए घृणा प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे, यदि ज्वालाए निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। हास्य रुदन में तूफानों में, ये शब्दावली पर ध्यान दी, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।
मैं शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता जगती, क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रगर हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपल, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको पल भर में ही छूकर। भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग।
अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम आर्थिक सुधारों का अटल स्वप्न। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी राजकुमार शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।